ओम शांति। हमारे बीच योगी तपस्वी बाबा के अति प्रिय लाडले और राजयोग की साधना में रत रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की अलौकिक ताली से भाई साहब का स्वागत करते हैं। भाई साहब 1972 से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आप प्रभावशाली वक्ता और मोटिवेशनल ट्रेनर हैं। आप बाबा के यज्ञ में धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने ईश्वरीय संदेश देने हेतु अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, दक्षिण अफ्रीका आदि अनेक देशों की यात्राएं की हैं। आप एक सफल राजयोगी साधक हैं। आपने पांडव भवन में टोली विभाग में भी काम किया है और बहुत प्यार से हमें टोली खिलाई है और मुख मीठा किया है। आपने टोली खिलाकर अनेक आत्माओं का मुख मीठा किया है और अब ज्ञान की बोली सुनाकर अनेक आत्माओं के मन को मीठा करने का अर्थात पवित्र बनाने की महान सेवा करने में रत हैं। आज आप हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर विषय अव्यक्त पालना का अनुभव करने के लिए अव्यक्त स्थिति कैसे बनाएं, इस विषय पर अपने अनुभवी विचार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में कुछ भाव मेरे मन में आ रहे हैं। रामनाथ भाई को रामनाथ शिव बाबा मिला तो रामनाथ ने आत्माओं को रामनाथ से मिला दिया। रामनाथ भाई को रामनाथ शिव बाबा मिला तो रामनाथ भाई ने अनेक आत्माओं का रामनाथ शिव बाबा से अलौकिक मिलन करा दिया। तो आज वो अव्यक्त मिलन कराने के लिए हमारे बीच उपस्थित है और हम सब आपके अनुभव युक्त ज्ञान युक्त बोल सुनेंगे और प्यारे बाबा की अव्यक्त पालना का अनुभव करेंगे। रामनाथ भाई।
ओम शांति। बहन जी कह रही थी टोली खिलाया, बहन जी ने बताया नहीं किसने सिखाया, ते अव्यक्त पालना। तो शुभ बाबा ने इस संगम युग पर आकर तीन प्रकार से पालना किया, आज भी कर रहा है तीन प्रकार से। सबसे पहले शिव बाबा ब्रह्मा साकार तन में आकर 350-380 भाई बहन थे तो साकार के द्वारा पालना कर रहे। किसने किया? निराकार शिव बाबा ने 1969 तक साकार तन के द्वारा एक एक बच्चों को हर प्रकार की पालना कराया, सिखाया, पढ़ाया, भाषण करना सिखाया, सब प्रकार के पालना कराया। हर बाबा रोज जाके कमरे में देखता था किसी बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमार हो। इतना तक हमने सुना एक बहन को उस समय रात को 2 बजे जैसे कि प्राण चला गया, बहुत डायरिया हुआ और बाबा को पता चला 3 दिन से ऐसे था तो बाबा इसका अंतिम घड़ी आ गई, 2 बजे आपको बाबा को बताया। तो बाबा ने एक बच्चे को बुलाया, बच्चे जाओ बाजू में गाय है उसको उठाओ और उसको बोलो बाबा को गाय का दूध चाहिए 2 बजे रात को। और उसने निकाल के दिया, बाबा ने 2 चम्मच पिलाया, ठीक हो गया। तो ये सुप्रीम वैद्य भी है, सुप्रीम सर्जन भी है, मना हर प्रकार की पालना किया। अभी आप कहेंगे ऐसे ही उनके द्वारा जिन्होंने पालना पाया है साकार, उदाहरण आपकी संतरी दादी थी, कलकत्ता में, जानते हो विश्व किशोर भाऊ की लौकिक वाइफ संतरी दादी। तो उन्होंने बाबा से सीख के कैसे पालना कराया, तो मैंने देखा, हमने कभी सुना ही नहीं था खजूर का गुड़ भी होता है। तो इतनी छोटी सी स्टील की डब्बी और इतना छोटा सा चम्मच, तो जब कल मधुबन में आती थी सबसे पहले आकर के इतने चम्मच से इतना सा गुड़ खिला के जाती थी। मैंने साकार ने उनको सिखाया, उन्होंने भी औरों को साकार में शरीर के द्वारा कौन प्रेरणा देता है, किसने सिखाया, साकार पालना। इतना ही नहीं, निर्मल शांता दादी को जानते हो, उन्होंने भी देखो मधुबन में पीस पार्क है ना, पीस पार्क में जाके बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, इतना मैंने पालना कैसे कराया। और एक विशेष अनुभव है कि अब अव्यक्त स्थिति, तो अव्यक्त स्थिति क्या है, एक दिन दादी ने बुलाया, यहाँ इंद्रप्रस्थ में थी तो बुलाया, तो मैं जाते जाते 12 बजे है, रिकॉर्ड बजाने था, दादी बाहर दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, कोई नहीं था, खड़ी थी। मैं जाते जाते रिकॉर्ड शुरू हो गया, मैं खड़ा हो गया दादी के सामने, दादी ने जो आंखें खुली थी पूरे रिकॉर्ड तक आंखें हिली नहीं, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे अंदर खींच रही है, मैं अंदर अंदर एक गुफा में जा रहा हूं। तो साकार ने जो उनको पालना, दृष्टि के पालना, स्थूल वस्तु से पालना, खिला पिला के, और तीसरा मैंने अव्यक्त स्थिति क्या है, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल बजा, 2 मिनट बचता है, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल तक खड़ी खड़ी खड़ी, उसमें अभी थोड़ा समय पहले बहुत यानी यंग नहीं एजड खड़ी भी नहीं हो सकती इतना, तो भी बुलाया था, तो मैं जाते जाते 5 मिनट लग गया, रिकॉर्ड बजने से पहले पहुंचा और रिकॉर्ड बज गया, जैसे खड़ी थी एक सेकंड भी हिली भी नहीं, आंखें भी हिली नहीं, मैं भी दृष्टि देता ही खड़ा हो गया, मुझे लग रहा था जैसे खींच रहा है। अव्यक्त पालना साकार के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने भी किया, बाबा के बच्चों जो है जिन्होंने लिया, ऐसे बाबा ने हमने देखा शुरू में 1978 से, आप बहन जी कहते टोली खिलाया, किसने सिखाया, साकार में 78 हिस्ट्री हॉल में बाबा आता था, उससे पहले बाबा के कमरे में आता था, 10-15 होते थोड़े होते थे, उसके बाद 50 तक हो गया, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा ऐसे जमीन पर, इस पर भी नहीं, संदली पर नहीं बैठता था, साथ साथ तो बाबा मिलता था वहां से। तो शांतिवन जाने से पहले जब तक ओम शांति भवन में है तब तक जिस समय बाबा आया एक दिन भी मिस नहीं हुआ, सबसे पहले टोली का डब्बा रखता था मैं, पहले बाबा डब्बा खोल के हमको खिलाता था, अगर बाबा बहुत सीरियस होके बैठता है तो हमने कहा चुपचाप रख के चला जाता हूं मैं, तो भी बाबा मुड़ करके बुलाता है, हमको पता नहीं चलता पीछे वाला के तरह बाबा बुला रहे, तो उठा कैसे गड़बड़ी भी नहीं, टोली देख के दृष्टि, मैंने साकार के द्वारा पालना कराया, कैसे कर, दादियों ने भी बाबा से जो पालना लिया उन्होंने भी, तो आपको जाना कैसी पालना करता है भगवान, एक तरीका। दूसरा तरीका है ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन गए, अव्यक्त बन गए, फरिश्ते बन गए, सूक्ष्म शरीर स्थूल तो इधर गया, उनके द्वारा गुलजार दादी के तन में आकर 50 साल तक पालना कराए, हर प्रकार के ज्ञान के खजाने सुनाए। थोड़ा कभी कभी आपके मन में अविश्वास आएगा, कैसे माने हम भगवान आया, भगवान आके पढ़ाता था, प्रूफ कोई पूछते हैं विश्वास नहीं होता इतना। तो देख लो आप, दुनिया में इतने लोग हैं, श्री राम गया, श्री कृष्ण का गीता सुनाई, अभी अभी प्रमुख स्वामी करके जो स्वामीनारायण का गुरु था, सत्य साई बाबा पुटपत्रिका कितना चमत्कार था, तो ये सब गए, कहां गए, अभी उनके कितने फॉलोअर है, उनकी पालना कौन करेगा, अगर उनका वो कर्मातीत होके गए तो कर्मातीत आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त प्रकृति जीत कहा, वो जब चाहे प्रकृति में प्रवेश कर सकता है। तो वो जो गीता सुना के श्री कृष्ण गया, कहां गया, अभी उसके जो फॉलोअर है जो मानने वाले उनको कौन सुनाएगा, वही पुरानी गीता, उस समय सुनाई थी, जो इतने धर्मगुरु इतने सन्यासी बड़े बड़े गए, देवताए गए, कहां गए? एक भी किसी के तन में आया? हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब बहुत लोग कहते थे अभी इनका कौन है, लोग समझते थे यही भगवान है। तो भी 50 साल तक तब का भगवान भारत में किसको कहते हैं? सारी दुनिया भगवान को गॉड फादर कहते हैं, बाप है। सिर्फ भारत देश में कहते हैं भगवान मात पिता है। मात पिता बच्चों को जन्म देके छोड़ते नहीं, पालना करते हैं, अंत तक पालना करते हैं। तो आज अपना तन नहीं होते हुए भी 50 साल से दूसरों के तन में आकर के जो 50 साल पहले ज्ञान सुनाया था वही आज तक भी सुनाते हैं। 50 साल से बच्चों की पालना किया, किसी ने ऐसा किया? कितने गुरु गए, कितने देवताए गए, कितने बड़े बड़े कोई गए, कोई भी धर्म गुरु किसी के तन में आके गया? कौन सा दयानंद सर, ये था दयानंद सरस्वती, कौन आपका रामकृष्ण परमहंस था, बहुत बड़े कितने गए, उनके फॉलोअर है ना अभी भी, उनकी पालना कौन करेगा, उनको कौन पढ़ाएगा? तो आज आप पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा तो नहीं पहले था, अभी कौन पालना करता है? स्वयं अपना तन नहीं, गुलजार दादी के तन में भी आकर 50 सालों से हर प्रकार के एक एक व्यक्ति को बिठाकर बाबा 7 डेज कोर्स कराता था। विदेशी जब आए एक एक को सारी रात, शाम को 6:30-7 बजे आया, सवेरे 8-8:30 बजे तक जब यह सुखधाम बन रहा था, बाबा ने बाहर आके सवेरे 8:30 नहीं 10:30 बजे ओपनिंग किया, रिमोट कंट्रोल दर जाके नहीं, बाहर ओम शांति भवन से बाहर आकर। तो किस प्रकार की ऐसे कौन करता है? तब भारत में भगवान को मां बाप कहते हैं, वो पालना करता है, ऐसे छोड़ता नहीं है हर प्रकार से। इसलिए आपको तीनों प्रकार से बताया कैसे कैसे पालना करता है। और आज भी ये दो प्रकार हो गया, कैसे गुलजार दादी के द्वारा आकर अपना तन नहीं होते हुए भी कैसे ज्ञान सुना, कितना हर प्रकार के ज्ञान के एक्सप्लेनेशन का। आप अव्यक्त मुरली निकालो, आज की मुरली देखो कितने प्रश्न है, आप सोच ही नहीं सकते। कोई साधारण मनुष्य कितना भी पंडित हो ऐसी ज्ञान की डेफिनेशन दे नहीं सकता है ना। स्नेह की परिभाषा, सेवा कैसी, ये कौन सी कर? तब का भगवान ज्ञान का सागर है। कितना? 1-2 साल नहीं, 50 साल तक। तो ये पालना। और तीसरा, अभी कि बड़े बच्चे हो गए, मां भी कहेंगे पाओ से चलो बच्चों को, 5 साल तक अपने गोदी में लेके जाएंगी, उसके बाद उठाएंगे उसको नहीं, पैदल चलो है ना, खींच के भी ले जाएंगे, उसको भी सिखाना है पाओ से चलना। तो ये मां बाप भी सदा पालना ऐसे कर मुंह से हाथ से खिलाता नहीं रहेगा, बच्चे अभी अपने पाव से यात्रा करो, इतने साल मैं आया सिखाया, हर प्रकार की ज्ञान सिखाया है ना। जैसे कोई कहता है क्योंकि 3 अवस्थाएं है, 3 पद है, हर प्रकार 3 है, दुनिया में भी 1st, 2nd, 3rd है, 4th नाम नहीं है, यहां भी 3 प्रकार की पुरुष, 3 प्रकार का पुरुषार्थ है, एक है तीव्र पुरुषार्थी, एक है श्रेष्ठ पुरुषार्थी, एक है पुरुषार्थी। पुरुषार्थी ड्रामा फिक्स है, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, हूबहू रिपीट हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा पार्टी है, ऐसे जो कहने वाले हैं पुरुषार्थी। एक है तीव्र पुरुषार्थी, कल मैंने गलत गुस्सा किया था, दोबारा नहीं करना है, रियलाइज करता है, ज्ञान और योग के प्रयोग से अपने को परिवर्तन करता है, वो तीव्र पुरुषार्थी। और एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी, मैंने गुस्सा किया था वो मैंने था, वो शूद्र था, आज मैं ब्राह्मण हूं, वो मैंने नहीं किया था, वो पुराना हो गया, मैं नया अभी ब्राह्मण हूं, मैंने नहीं किया, उस स्मृति को भी मिटा देता, कभी वर्णन भी नहीं। तब का श्रेष्ठ पुरुषार्थी। पवित्रता में भी 3 पद है, राजा के लिए पवित्रता अलग है, रॉयल फैमिली के लिए पवित्रता अलग है, प्रजा के लिए पवित्रता अलग है। तो आप देख सकते हो कि मैं किस ग्रेड की आत्मा हूं, कहां आ सकता हूं। तो कहा फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट, शरीर और मन स्वच्छ विषय, ये प्रजा के लिए पवित्रता है। शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ। दूसरा, डिजायर इज इम्प्यूरिटी, इच्छा अपवित्र। इच्छा क्या है? वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने सेवा किया, ये है ना, ये वस्तु बहुत अच्छी, इसके पास बहुत अच्छा बैच है, मुझे चाहिए। व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो चाहिए मुझे। तो ये वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान, ये इच्छाएं, ये उसको ऊंच पद पाना नहीं देता है। बाप के दिल तक नशीन नहीं बन सकता है। सेवा कर रहे हैं बाबा ने, आज का बाप के दिल तक कौन बन सकता है? सेवा में भी कैसे सेवा, दिल मना, दिल तक कहां है बाबा का? परमधाम में, सूक्ष्मतन में कहां है बाबा का दिल तक? कहां है? कलकत्ता में होगा ना, गद्दी कलकत्ता में गद्दी कहते हैं। बताओ बाबा का दिल तक कहां है? कौन बताए? ये तख्त, आपका दिल, ये तो दिल निकाल के दूसरा लगाते हैं, ये तो खून चलाता है। नहीं, ये दिल दिया, ये दिल बाबा को नहीं चाहिए, ये तो शरीर का है, ये खून चलाता है, धड़कन बंद हो गया, खत्म। तो ये दिल नहीं, और बताओ, दिल तख्त कहा, पता है किसी को? पता है, बहुत दफा सुना लेकिन समझ में नहीं आया। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ सोल, आत्मा की बात कह रहे ना यहां, अव्यक्त स्थिति है, व्यक्त नहीं है, शरीर की बात नहीं है, शरीर का ज्ञान यहां नहीं सुनाया जाता है, यह आत्मा की, अव्यक्त, व्यक्त शरीर, अव्यक्त आत्मा। आत्मा का दिल कहां है? दिल और दिमाग, दिमाग बहुत चलाते हो, मन, दिल बुद्धि है ना। बाबा को क्या कहते? बाबा ने कहा, दिल मेरे से लगाओ, दिल में दिलाराम को रखो। दिलाराम आपके पास बैठेगा अपना घर छोड़कर? नहीं, उसने जो श्रीमत दिया, ज्ञान दिया, वो याद है। याद किसको रहता है? बुद्धि को, मन को नहीं, बुद्धि के अंदर। तब कहा दिल, दिल में, दिल में कौन है? बाबा ने ये कहा, तो बाबा की याद है ना, बाबा आके नहीं बैठेगा। तो ऐसे बाबा का दिल है, बाबा के पास दिल है, बुद्धि है, मन बुद्धि संस्कार है, उसको किसकी याद रहेंगे? याद आएंगे, हाँ ये बच्चा बहुत अच्छी सेवा करता है, निस्वार्थ है, निष्पक्ष है, निर्मल है, हर प्रकार की श्रीमत के अनुसार सेवा करता है, तो वो बाबा भी उसको याद करता है। कल बाबा ने सुना था, बाप बच्चे कैसे ज्ञान सुनाते हैं? बाप देखता है, सुनता है। तो आपके मन में विचार आएगा कभी, बाबा सुनता है अभी? कहां सुनता, साकार में था तो सुनता था, अभी कैसे सुनेगा? दिल का आवाज तो कहां सुनेगा? इधर तो नहीं। अगर आपका आवाज सूक्ष्मतन परमधाम तक पहुंचेगा, भावना, तो आपको प्रूफ चाहिए। एक प्रूफ बताता हूं, बहुत है तो शॉर्ट बताता हूं, बहुत दफा सुना, देख लो, आज जीवित कहानी नहीं सुनाता हूं मैं कभी। मनुष्य को फेथ नहीं अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिल गया, ये सही कि वो सही है ना। कलयुग में होता आर्टिफिशियल चीज जो है ना, बहुत चमकीली होती है, सोना, रियल हीरा और आर्टिफिशियल, पता नहीं चलता है कि माया भी बहुत चमकीली है, वो बहुत आकर्षित करती है, इसलिए हम परख नहीं सकते हैं। तो हमको लगता है कि बहुत लोग कुछ सुनाते हैं, ये सही है कि वो सही, तो वेरीफाई करना पड़ता है कभी कभी। तो कहानी बहुत है, कहानी में मसाला भी लगता है थोड़ा, तो प्रैक्टिकल जीवित है अभी भी। बहन जी गुजरात में टीचर है, तो उनके दो भाई थे, पिताजी को पैरालिसिस हुआ, 50 साल से बाबा के बच्चे थे, शांतिवन में थे, तो बड़े बेटे को लगा कि पिताजी की सेवा करना चाहिए, कि रिटायर्ड हो गया, दोनों ज्ञान में नहीं चलते थे। बहन को लेकर तीनों दादी के पास आए और दादी को कहा, दादी पिताजी को हम ले जाते हैं। दादी ने कहा, ले जाओ। लेकिन बहन को लगा, टीचर जो अभी भी है, कि इतना साल बाबा ने खिलाया, सेवा कराया, अभी वो बहू क्या खिलाएंगे। लेकिन दादी को बता नहीं सकते, मैं सेंटर में ले जाती हूं, रख नहीं सकता है, तो क्या करे? चुप रहे। तीनों ही बाबा के ऊपर मधुबन आए, बाबा के कमरे में बैठे यहाँ अभी, और बाबा से मन में संकल्प, उनको भी कोई विश्वास नहीं था, ये उसके मुख से बोले हुए शब्द, मैंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं, उन्होंने सुनाया कि बाबा कमरे में बैठे, बाबा आप आज आपने जो निर्णय लिया दादी ने वो सही नहीं लिया, फिर भी मेरा पिताजी नहीं है, मेरा पिताजी तो आप है, लेकिन ये आपका बेटा, आपने इतनी पालना किया, ये ठीक निर्णय नहीं लिया, इतना बता के चले गए। उनको भी विश्वास नहीं, बाबा का फोटो है सुनेगा कुछ जवाब आएगा। उसी दिन शाम को गुलजार दादी के तन में शांतिवन में बाबा थे, तो व्हील चेयर पर दृष्टि देने के लिए आए, दोनों भाई भी आए, पिताजी को भी व्हील चेयर पर, वो भी आई, सब जाके नीचे बैठ के, वो आगे कोने कोने में स्टेज पर बैठी, लास्ट था। तो बाबा जाते जाते बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। उनको याद भी नहीं था, मुरली सुनते सुनते सब भूल गए, सवेरे ऐसे बोल के आई, किसने सुना, कोई विश्वास भी नहीं है, बाबा सुनता है और कुछ, और किधर सुना है दिल के बाद, तो आप बताओ, तो यहां बाबा के कमरे में सुना किसने, मुरली चित्र तो फोटो है, और वहां जवाब किसने दिया, पक्का थोड़ा 1% भी अविश्वास नहीं, थोड़ा तो होगा बाबा, ये तो कहानी होगा, इसलिए मैं कहा कहानी नहीं, कहानी बहुत, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना, वंस अपॉन ए टाइम कहते हैं, किसने देखा, अगर आपको कोई संशय वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य को प्रूफ चाहिए कि साइंस, बिकॉज सब लोग कहते हैं साइंस माइंडेड हो गए, साइंस पर विश्वास क्यों है, साइंस हर चीज खोल के दिखाता है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, मान के चलो नहीं, इसलिए लोगों का शास्त्रों पर ज्ञान पर विश्वास नहीं, प्रश्न नहीं पूछना, चुप बैठो, सत्वचन महाराज जी जो कहा वो सुनना है, तो मनुष्य प्रेशराइज होता है, प्रेशर हो गया, खुला नहीं है, साइंस हर चीज कोई चीज पूछ लो खोल के दिखाता है, ये चीज है, इसके अंदर ये क्या है, तो मनुष्य का विश्वास साइंस पर ज्यादा हो गया, तो ये भी स्पिरिचुअल साइंस है, ये शास्त्र नहीं है, ये भी ज्ञान कौन सा है, इट्स अ प्योर स्पिरिचुअल साइंस है, हर एक शब्द का हर प्रकार से खुला हुआ है, जैसे आप पूछेंगे अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त शरीर, शरीर के हर नस नसों का ज्ञान डॉक्टर को है, ही इज कॉल्ड फिजिशियन, आत्मा क्या है, आत्मा का भी विस्तार से 2 घंटा, एक आत्मा के ऊपर 2 घंटा एक्सप्लेनेशन है, पहले टीचर्स ट्रेनिंग होता था यहां, सिर्फ एक लेसन हम लेता था आत्मा के ऊपर, 2 घंटे मिनिमम, आत्मा क्या है, मन क्या है, मन एक एक के डेफिनेशन है, माइंड इज ए मशीन विच क्रिएट्स थॉट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ गुड एंड बैड डे एंड नाइट, मन एक मशीन है, ये दिन रात उसके अंदर विचार चलते रहते हैं, तो आप देख लो मेरे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, 2 प्रकार के, एक पुराने खाली बैठे पुराने बातें याद आती है, एक इसको देखा आपने, देखते ही विचारेगा रियल है कि आर्टिफिशियल है, क्रिएटिव वर्तमान, ये 2 प्रकार के मेन विचार चलते हैं, अपने आप को चेक करो, तब कहते हो मेरा मन, किसका मन है, किसका मन है, मेरा, मैं कौन, आत्मा अलग और मन अलग है, तो कौन कहता मेरा मन, तो आत्मा अलग हो गया ना, मैंने आपको पूछा भाई जी आपका नाम, आप अलग मैं अलग, है ना, तो आत्मा ने मन को पूछा तो मन अलग है और आत्मा अलग है नहीं, तो कौन पूछता है, हाँ बेंजे ने बताया बुद्धि, मैं आय, ये कौन बोलता है, बुद्धि, इसलिए बुद्धि जागती ज्योत है, ये क्यों हुआ आज तक, साइंस ने हमको बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस बताया, बुद्धि कहां है, किसी को देखते मेरे मन में गलत विचार है, आपको पता है नहीं, मुझे पता है, तो मेरे मन को कौन समझाएगा, तब मनुष्य ने शराब पीना तंबाकू खाना सीखा, ये नशा क्यों आया, डॉक्टर नींद की गोली देगा, डिप्रेशन कहा, तनाव शब्द बोल दिया, है ना, ये मन के अंदर गलत विचार चलता है, इसको कौन ट्रीट करेगा, तो बाबा ने आके दिव्य नेत्र जन्मते ही कि बुद्धि का ज्ञान दिया, तब कहते हैं माता है मंदिर में जाते, भगवान मन दे दो नहीं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तो हमारे पास बुद्धि नहीं आए है, हाँ, तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि तीन प्रकार से काम करती है। दोनों हाथ इस शरीर के ही है, लेकिन ये हाथ क्या काम करता है, ये हाथ क्या काम करता है, ये हाथ कहां यूज करना चाहिए, ये हाथ कहां यूज करना चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए। शरीर का ज्ञान मां गुरु सिखाती है, तो यहां भगवान सदगुरु आके आत्मा का ज्ञान सुनाता है, तब हम उसको मां बाप कहते हैं, टीचर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, वो पढ़ाता है। बुद्धि तीन प्रकार से काम करती है। एक, किसी को देखते ही निर्णय करते, आम को देखते ही ये आम फल खाने वाला है, निर्णय करता है। फिर बुद्धि नेत्र है, इन आंखों के द्वारा देखते, ये आम कच्चा है, पका नहीं है, खाने वाला नहीं है, है ना, देखता भी है स्थूल। फिर ये आम पका हुआ है, खाने लायक है, लेकिन मीठा है कि खट्टा है, कल मैंने खाया था, तुरंत बुद्धि कहेंगे ये आम ठीक नहीं, कल मैंने खाया था, खट्टा है, दिखाई देगा नहीं, अनुभव। सूक्ष्म चीजों का बुद्धि अनुभव करती है, स्थूल चित्र दिखाती है, ये पता होना चाहिए। क्यों आप कहते हो कभी कभी विजुअलाइजेशन, इसलिए बताया, ये स्थूल वस्तु विजुअलाइज करना नहीं, रियलाइज। आत्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, सूक्ष्म है, विजुअलाइज नहीं, रियलाइज, महसूस। हाँ, मैं आत्मा, इन बिटवीन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में ब्रह्म द्वार कहते हैं, इस शरीर के मस्तक के बीच में अंदर मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, महसूस हो रहा है, दिखाई नहीं देता है। यहां दर्द हो रहा, कहां होता है दिखाओ, दर्द हो रहा है ना, महसूस होता है। तो ऐसे महसूस रियलाइजेशन कहा कि मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर आत्मा इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो आप कर्म करते हो, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, तब उसको पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा कहा। किसी ने बनाया नहीं किसी को पापात्मा पुण्यात्मा, बाबा ने बनाया नहीं। तो मेरे कर्मों से आत्मा ने जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड कोई देखता नहीं है, कहीं कैमरा नहीं लगाया, कोई पूछ देख, भगवान भी नहीं देखता है, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक अगर शब्द जानते हो अच्छी तरह से, तो बाबा को याद करने की जरूरत नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कपड़े अगर सफेद है, स्वच्छ है, तो साबुन की क्या जरूरत है? काले करते हो, ध्यान नहीं रखते, तो धोने के लिए साबुन चाहिए, है ना। तो ध्यान दे दो तो जरूरत नहीं है। तो एक ही ध्यान कि मैंने शरीर में जन्म लिया, यह सदा के लिए नहीं, अविनाशी नहीं, थोड़े समय के लिए, इस थोड़े समय के अंदर इस शरीर के द्वारा एक एक से, हां ये गुस्सा करेंगी, उनका धर्म, उनका कर्म, उनका पार्ट है, मैंने क्या किया, वो दुख देंगे, वो ऐसे बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, कलयुग है, मेरा हिसाब किताब है, मैंने 100 रुपया दिया, मांगने आएगा नहीं मांगेगा, ऐसा नहीं, अभी नहीं, 10 जन्म पहले लिया था, अभी मांगने आया। आत्मा तो वही है ना, मैंने कल अलग कपड़े पहने, आज अलग पहना, मैं तो वही है ना, कपड़े अलग है। तो हिसाब किताब सारे जन्मों का इस अंतिम समय चुक्त करना पड़ता है। तो इसके लिए तो ज्ञान और योग की शक्ति चाहिए, तो उसके अंदर यही एक स्मृति चाहिए, बस एक ही स्मृति, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, उसको कहते हैं, एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। मुझे पता नहीं था उन्होंने चाय पिलाया, पिया किसने, पिलाने वाले को असर पड़ेगा कि पीने वाले पर, पिलाने वाले का नहीं, हाँ, पीने वाले का, क्या आपको बुद्धि है, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फुल मैन, क्योंकि हमको बुद्धि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ है। और हर एक व्यक्ति कुछ कर्म गलत करता है तो को अंदर महसूस होता है ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं उसने भी, वो भी करता है, ये भी करता है, सब लोग करते हैं, मैंने किया तो क्या होगा, हम तर्क देते हैं, है ना। हर एक आत्मा की बुद्धि सत्य है, चैतन्य है, वो हर एक को बताता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं कि उसके पास पावर नहीं है, विल है, विल पावर नहीं, क्योंकि शरीर को तीन दफा खिलाते हो, आत्मा को कुछ खिलाया नहीं। तो वीक माइंड, आत्मा, शरीर शक्तिशाली हो गया है। तब बाबा ने कहा बच्चा आत्मा को शक्ति को बैलेंस चाहिए, सेवा और याद दोनों में बैलेंस नहीं, तो एक में बैलेंस है, एक चीज है पावरफुल, एक नहीं है। तो इसलिए आत्मा का पूरा ज्ञान चाहिए, आत्मा कहां रहती है। फिर आत्मा के अंदर भी दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। अगर आपने शरीर के द्वारा जो कर्म किया वो स्थूल कर्म है, स्थूल कर्म के द्वारा स्थूल शरीर की रचना होती है। ये काला लंगड़ा अंधा कौन बना रहा है? किसका शरीर काला लंगड़ा अंधा गोरा कौन करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रॉस एक्शन इस फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल शरीर के रूप शरीर को तो भी उसके अंदर भी और क्लैरिटी है कि 75% आत्मा के संस्कार से शरीर की रचना होती है और 25% रह गया, 15% मां बाप का प्रभाव पड़ता है। कभी कहते ना ये मां बाप के जैसे लगता है, और 10% नेचर का प्रभाव पड़ता है। अफ्रीका में किसी ने जन्म लिया तो नेचर काला शरीर होगा, नेचर का भी प्रभाव पड़ता है। 75% शरीर को डिजाइन कौन दे रहा है? हम चाहते सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनना चाहिए, लक्ष्मी जैसे बनना चाहिए, अपने आप बनेंगे? ऐसे संस्कार, ज्ञान सुनने से नहीं, संस्कार से संसार बनता है। संस्कार चाहिए, ज्ञान लेके नहीं जाएंगे, वो यूज करके जो संस्कार बनाया आपने, संस्कार जीवन देता है, ऐसा शरीर का डिजाइन करता है। भगवान बैठ के डिजाइन नहीं करता है। फिर आया और एक स्थूल हो गया। अभी आपने किसी को गुस्सा नहीं किया, किसी को देखते मन में गलत विचार किया, आम खाया नहीं, देखते मुंह में पानी आ गया, खाना चाहिए, फील किया, सूक्ष्म संस्कार बन गए। रिफ्लेक्शन ऑफ सटल प्योर एक्शन इज एंजल। फरिश्ता कैसे बना? किस लाइट से? हम कहते हैं लाइट से बना। कौन सी लाइट? कैंडल लाइट, मून लाइट, सन लाइट, किससे बना? फिर आया भूत, हम कहते हैं डेविल। रिफ्लेक्शन ऑफ सटल इम्प्योर एक्शन, अपवित्र विचार करते हो, भूत बनता है। हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन आत्मा के ऊपर बहुत विस्तार से ज्ञान है, हर प्रकार से समझना चाहिए आत्मा क्या चीज है। पहले अपने लिए, दूसरों को समझाने के लिए बाद में, आपको अगर कन्विंस होना चाहिए, अगर मेरे मन में ऐसे विचार चलता है, मैंने गुस्सा नहीं किया, गलत कुछ नहीं किया, लेकिन विचार ऐसा चलता है तो क्या होगा, इसका प्रभाव कहां पड़ता है? अगर ऐसे विचार करता हूं तो क्या होगा? तो इसका ज्ञान चाहिए आत्मा के ऊपर। तो फरिश्ता कैसे बना? आत्मा के अंदर सूक्ष्म जो संस्कार है, आत्मा शरीर, कोई भी शरीर छोड़ते ही, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ा, क्या देखा? ज्योति। सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा ने, दादी ने, दादी के हाथ में हाथ दिया, फरिश्ता निकला नहीं, लाइट निकली। शंकराचार्य का देखा, ज्योति निकली। कहीं भी फरिश्ता शरीर से निकलता किसी ने नहीं देखा, है ना? आत्मा बाहर आने के बाद आत्मा के अंदर जिस प्रकार के संस्कार है उस प्रकार की रिफ्लेक्शन लाइट चमकती है। ये सफेदी लाइट, इसके ऊपर बाहर से लाल कागज लगाया, लाल लाइट नहीं है, आपने कागज कोटिंग किया है। ये प्योर आत्मा के ऊपर किस प्रकार का कोटिंग है? इम्प्योर संस्कार का कोटिंग है तो भूत जैसा दिखाई देगा। प्योर कोटिंग है, शरीर में रहकर किए हुए कर्म, सफेद प्रकाश का शरीर दिखाई देगा। तो फरिश्ता वेक्स स्टेज क्या चीज है ये, इसका भी ज्ञान। क्योंकि मुझे याद है आज से 35 साल पहले एक सिस्टर हाइडी करके थी, जर्मनी से आती थी, और वो सबको मैनेजमेंट पढ़ाती थी, बहुत होशियार, सारी वर्ल्ड को मैनेजमेंट पढ़ाती थी। उसने स्पिरिचुअल लॉस करके किताब बनाया बहुत। तो ऐसे फॉरेनर्स के क्लास में तो हमने ऐसे बताया, एंजल इज मेड ऑफ व्हाट, क्योंकि अमेरिका जर्मनी ये 60% एंजल्स को मानते हैं, उसके ऊपर पीएचडी करते हैं। उसने पीएचडी की थी, मुझे पता था एंजल फिलोसॉफी के ऊपर। तो हमने पूछा व्हाट इज एंजल, तुरंत उसने कहा एंजल इज मेड ऑफ लाइट। हमने कहा विच लाइट, किस लाइट से? कैंडल लाइट, मून लाइट, सन लाइट। वो कहने लगे लाइट इज लाइट, हमने कहा नहीं विच लाइट। तो आपको पता होना चाहिए फरिश्ता कहते हम, फरिश्ता कैसे बना। तो ज्ञान जितना गुई जाओ, तब कहा बाबा ने ये नया ज्ञान है, ये किसी ने कहीं नहीं सुनाया, किसी शास्त्रों में किसी के पास नहीं मिलेगा। तब जो दुनिया में नहीं है वो सुनाने के लिए वो आता है। अगर दुनिया में कुछ है उसको आने की जरूरत ही नहीं है, इस किताबों में इस शास्त्रों में यहां सुनाया, अभी आपको इतना सुना, इसमें से एक शब्द भी किसी के पास नहीं आए। आज से 20 साल पहले अमेरिका में था मैं, तो एक अमेरिकन व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश और संस्कृत जानता है। तो पीस विलेज करके है, तो वहां बहुत बड़े कितना 300 एकड़ जमीन है, तो उसको किताब लिखना था गीता पर, तो ढूंढ रहा था मकान। किसी ने कहा इनके पास बहुत मकान है, आप इधर जाओ मिल जाएगा। तो बहन जी ने उसको एक हफ्ते के लिए कमरा दिया, आप लिखो बहुत अच्छा है, इंग्लिश और संस्कृत दो ही भाषा, अंग्रेज है। तो मुझे कहा आप मिलो, तो मिला। मैं जब कुछ बोलू रामायण का श्लोक सुनाता है, कबीर का श्लोक सुनाता है संस्कृत में, गीता का हर एक एक को एक एक श्लोक। तो मैंने कहा गीता इसने अच्छी स्टडी किया है। तो मैंने पूछा गीता में कहीं भी बुद्धि का ज्ञान है, साइंस ने तो नहीं पढ़ाया। गीता नंबर वन ज्ञान शास्त्र कहा, शिरोमणि सब में ये ज्ञान नंबर वन, कहता हां एब्सोल्यूट। तो मैंने कहा गीता में कहीं बुद्धि का ज्ञान है, कहता नहीं। बुद्धि है नहीं। हमने कहा आपने गीता ठीक पढ़ी नहीं है। नहीं, मुझे कोई भी पूछो मैं तुरंत श्लोक बताता हूं, कोई भी चैप्टर का अर्थ बताओ। तो फिर हमने कहा गीता में अर्जुन को एक जगह कहा, हे अर्जुन जिसको बुद्धि नहीं है वो सुख दुख और सुख को, सत्य और असत्य को, वो चमत्कार मैं मेरा नाना है ग्रैंडफादर है उसके ऊपर भीष्म पितांबर बाण कैसे चलाऊं, पिताजी को कैसे मारू, परिवार वालों को कैसे मारू। हे अर्जुन बुद्धि से निर्णय करो मैं क्या कह रहा हूं, किसको मार रहे हो, आत्मा अविनाशी है, ये शरीर आज आपने नहीं किया तो कल मर जाएगा। तो वहां एक्सप्लेनेशन देता है जिसको बुद्धि नहीं है वह सुख और दुख को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, सत्य और असत्य को। तब बाबा ने कहा बच्चों को पहले दिव्य बुद्धि देता हूं जानने के लिए, दुनिया में जो ज्ञान है और बाबा ज्ञान दे देता है उसको समझने के लिए, वो बुद्धि वाला ही दिव्य बुद्धि वाला ही समझ सकता है, नहीं तो ये ज्ञान भी कोई समझ नहीं सकता है, भावना से चलता है। तो अच्छी तरह से स्टडी चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में एक ही दफा है जो ज्ञान देता है, और इसके द्वारा जो आप प्राप्ति करते हो कर्म करते हो भगवान एक का पदम गुना रिटर्न देता है, अपने अपनी संगम पर जो ज्ञान देता है सारे कल्प के लिए प्राप्ति गारंटी करता है कि जन्मों के लिए, क्योंकि अविनाशी है, देने वाला कौन अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है, सुनने वाला कौन शरीर तो नहीं सुनता, आत्मा अविनाशी है, उसका फल अविनाशी है ना, इसलिए जानना चाहिए। तो आत्मा का ज्ञान अव्यक्त स्थिति जानना चाहिए। तब बाबा आज भी आप कहेंगे बाबा आज भी पालना करता है, पहले 50 साल तक बच्चों के लिए बाबा आता था, अभी बाबा कहते हैं बच्चे यहां से आप ऊपर आओ, अव्यक्त मूलन वहां करो, मैं वहां से देखता हूं सुनता हूं हर एक बच्चों की आवाज सुनता हूं मैं। आप ऐसे समझना नहीं बाबा कहां है, बाबा आता नहीं, आता है। देखो शांतिवन में जो आते हैं हर एक ने एक एक अनुभव सुनाया, इतना एक भाई नया नया आया कुछ पता नहीं ब्रह्मा कुमार इसका कुछ नहीं पता है, बहुत बड़ा बॉम्बे का कोई बिजनेसमैन था, किसी ने उसको बुलाया और आ गया और मुझे कहा भाई जी बाबा का टर्न है इनको बिठाऊ। हमने कहा आपने बुलाने से पहले पूछा नहीं, अभी टाइम हो गया आज 2 घंटे के बाद आएगा और अभी पूछ रहे हो, ठीक है कुंवर जाने खाना खा के बिठा दो। तो उसमें हॉल में कोई बोल रहे थे बाबा आ रहा है बाबा आता है, तो उसने किसी को कौन सा बाबा आता है, रामदेव बाबा आने वाला कि कौन से बाबा, किसी को पूछा बाजू में खाना खा रहा था, तो उन्होंने कुछ सुनाया तो ये भगवान है आप जानते नहीं हो। और हॉल में बैठा उसने गुलजार दादी के, गुलजार दादी नहीं थी अभी, चित्र में वीडियो में कैसे बाबा ऊपर से आके प्रकाश दे रहा है, किरणें दे रहा है, आ करके बता के गया। तो अव्यक्त पालना का, व्यक्त रूप में नहीं, किसी प्रकार का शरीर भी नहीं, ऊपर से आज भी पालना करता है एक एक बच्चों का। इतना नहीं, आज भी कहेंगे, अब भी देखो, एक दो साल पहले ही आप कहेंगे बाबा कहां कहां नजर देता है। अगर एक सेंटर की टीचर दो साल पहले मिली, भाई जी बाबा ने हमको तो सेंटर दिया है नहीं, छोटा सा सेंटर है, बड़ी दो तीन बड़ी बहनें हैं, छोटी बहन है, हमने कहा देगा। एक डॉक्टर ने बना बना हुआ मकान रेडी दे दिया, तो फोन करके बताया भाई जी बड़ी बहन और हम दोनों देखने जा रहे हैं। हमने कहा देखो आपका भाग्य खुल गया, भगवान ने देखो आपने कहा तुरंत मिल गया। गई, पाव रखा और फोन करती, भाई जी ये सेंटर मुझे नहीं लेना है। हमने कहा ठीक है, बड़ी दीदी कुछ नहीं बोल रही है, आप बोल रहे हो। नहीं भाई जी, पाव रखते ही ऐसी टचिंग है बच्चे, ये बाबा की सेवा के लिए नहीं आए, नहीं लेना है। नहीं लिया, खाली आ गई वापस। 6 महीने के अंदर ही एक व्यक्ति साइकिल से आया, बहन जी ये 9 लाख रुपया ले लो, आप जमीन ले लो, और अभी कहते जनवरी में ओपनिंग करेंगी। कौन देखता है, किसने टचिंग दिया, कहां बाबा है? हाँ, आप पूछेंगे कहां बाबा पालना आज कर रहा है, विश्वास प्रैक्टिकल जीवित, ये भी कहानी नहीं, अभी भी पंजाब में बहन है, तो एक कहानी है, कहां बाबा सुनता है, किसका, सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है। यहां जहां जरूरी है, आपको बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, ब्रह्मा बाबा भी कहता है बाबा मेरी खांसी ठीक करो, बच्चे तुम्हारा कर्म तुमको भोगना है। हाँ, तुम्हारा शरीर लिया मैं भाड़ा दूंगा, तुम्हारा कर्म में इंटरफेयर नहीं करता हूं मैं। अगर महाभारत पढ़ा हो, वहां भी देखो इंद्र सभा में सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है दुशासन। कोई परिवार से एक भी व्यक्ति ने आकर मदद नहीं किया, कोई उठे नहीं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया, वो भी आया, द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन तुम रुक जाओ, रुका, उसको रोकना नहीं चाहता। आप बताओ, अभी दो भाई लड़ाई करते हैं, आप दोनों देखते चुप बैठेंगे? आप एक तो रोकें, भैया आप रुको, मदद नहीं करेंगे। तो भगवान अगर आके उसको नहीं रोक सकता है, क्या आप किसी को रोक सकते हो? सोच लो। हाँ, ये कहानी सुनने की नहीं, अप्लाई, ये संगम युग की आज की जो घटना है वो यादगार के रूप में किसी ने लिखा। आज मेरा हिसाब किताब है, बहुत गुस्सा कर रहे, बहुत दुख दे रहे, बहुत परेशान, हाँ कर रहे, नहीं ऐसा नहीं, वो सहन करने के लिए, हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, खत्म करने आए हम बाबा के पास, क्यों है? अनेक जन्मों को जा ऋण है वो खत्म करने आए हैं, करके कर्मातीत बन गया। अगर आपने सहन नहीं किया, एक शब्द बोल दिया 5000 साल के लिए, तब का संगम पर शूटिंग भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, कैमरा खुला लगा है, कर रखा है, आप जो करते हो 5000 साल का रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो पहले किया था, अभी आपके पास ज्ञान और योग है, ये गुस्सा करेगा नहीं, ऐसा नहीं, परिस्थिति आएंगी, मुझे क्या करना है? आपके पास अस्त्र है, अस्त्र का उपयोग करो, अपने को बचाओ, नहीं बचाया, पहले जो करते वो आज भी किया आपने, तो वही फॉरवर्ड हो जाएगा ना। कल भी आप गुस्सा करते थे, आज भी गुस्सा कर रहे हो, ज्ञान सुन के फायदा क्या हुआ? कल भी तो करते थे ना, ज्ञान सुनने के बाद, ये सुनने के लिए कहानी है, बहुत अच्छा था। ये ज्ञान अस्त्र है, ये दवाई है। अगर ये बीमारी आपने मिटाया नहीं, तो ज्ञान और योग का मतलब क्या है? क्यों सुन रहे, टाइम वेस्ट नहीं, ये अपने स्वभाव संस्कार का प्रयोग करना है, अपने आप को सुधार, इनको सुधारने नहीं जाना, इसको मैं क्रोध मुक्त करवाऊंगा, नहीं, ये नहीं करना, मुझे करना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारस में एक स्लोगन है, क्या है वो? स्वपरिवर्तन से विश्व पर, कि औरों को परिवर्तन, 90% हम ज्ञान औरों के ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं, औरों को सकाश देना चाहते हैं, विश्व को देना चाहते हैं। अरे अपने स्वभाव संस्कार कहां गया? अपने क्रोध के ऊपर चिंता ही नहीं है, विश्व को देना चाहते हो, अपने को पहला देखो। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी पहले अपने परिवार को सिखाया, फिर बाहर, चैरिटी बिगेंस एट होम, है ना, पहले बाहर नहीं, घर में अशांति है और दुनिया को ज्ञान सुना कोई मानेगा नहीं ना, तो पहले घर से भी पहले अपने को। तो अव्यक्स्थिति कहा, अव्यक्स्थिति मीन्स ज्ञान है मैं कौन और मेरा कौन, ये स्मृति है चलते हुए, और कुछ नहीं करना, शरीर छोड़ना, भूल जाना, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में रहो, कर्म करो, अवेयरनेस है, मैं कौन, मैं किसका बच्चा। देखो राजा के बेटे को पता है मैं किस राजा का बेटा, मिनिस्टर के बेटा जो उसकी चलन कैसी होती है, कैसे फकर होता है उसका, तो वो नशा, वो स्मृति, मैं किसका बच्चा हूं। तब बाबा ने आज कहा आपकी तक क्या दिखाना चाहते, आपके तस्वीर से बाबा का क्या दिखाना चाहे, हाँ आपके चेहरे को देखते, अगर आप चलते फिरते शिव बाबा का चिंतन कर रहे हो, ज्ञान का चिंतन करते हो, औरों को लगता है ये कहीं खोए हुए है, बेटा इधर है ना, आपके वाइब्रेशंस फैलता है। देखो फैन चलता है, ठंडी हवा फैलती है, फैन है, अगर फैन चलता नहीं हवा फैलेंगी नहीं, मन है, मन बुद्धि ये दोनों चलता है, अच्छे विचार करता है तो वाइब्रेट करता है ना, उसको ओरा अलग अलग भाषा दिया तो ये वाइब्रेशंस है। तो अच्छे विचार अगर कहते हो, अच्छे विचार को किसको कहा, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी इसमें नंबर वन पवित्रता है, नंबर वन राजयोग है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, तब का सहज राजयोग, जो आपको तीन प्रकार की पवित्रता बताया उन सबका भी निचोड़ एक ही में आ जाएगा। किसी भी आत्मा को देखते ही कोई भी हो, इसको शास्त्रों में कहा अधम ते अधम महापापी है, पत्थर मारना चाहिए नहीं, दया क्षमा, दया क्षमा माने को क्या है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत खराब है, होपलेस है, डॉक्टर कहेगा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको ले जाओ, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सारी रात भी खड़ा होकर के प्रयत्न करता है, होपलेस को भी होपफुल कहता है। अगर हमारे सामने कोई आया देखते ही, कैसा भी हो, कितना सुंदर हो, कितना खराब भी हो, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, क्योंकि शरीर दिखाई नहीं देगा, आत्मा शरीर के अंदर, आत्मा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है नहीं, पता है भगवान का बच्चा बेटा है। शुभ बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करो, ये नंबर वन राजयोग है। एक ही दिन करके देख लो, आज शुरू हो रहा दिन, आज रात को नहीं तो कल शुरू करो, कल सवेरे से रात तक, एक घंटे में 60 मिनट है, 60 मिनट नहीं चाहिए, एक मिनट, एक घंटे में एक बूंद, कहते पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कितना सोचे, एक व्यक्ति को देखते ही अच्छी तरह से देख लो, देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, ये नंबर वन पवित्रता है। अपवित्रता कहां, आंखों में रहती है, पहले मन में आती है, फिर आग जाते, फिर बोल निकलता है, फिर कर्म होता है। माइंड इज रूट कॉज, मन जीत जगत जीत का, मन को जीत लो, मेरे मन में किसी को देखते ही क्या विचार आ रहा है, कल तक इनको देखते और कुछ विचार आता था, अज्ञानी थे हम, अभी ज्ञान समझ में आया, इनको ही देखते हुए आज क्या विचार आ रहा है, अगर पहले जैसे ही विचार आता है तो समझाना है मुझे, ज्ञान पढ़ करके, पढ़ के क्या किया, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने को समझा नहीं, कल तक मैं शरीर को देखता था, मेरी युगल कहता था, मेरी मेरा पति कहता था, मेरा बच्चा कहता था, नहीं ये शुभ बाबा का बच्चा है, ये मेरा नहीं, भगवान का बच्चा है। हाँ कोई पूछता है तो बताना जरूर, को नहीं कहना भगवान का बच्चा, ऐसे नहीं कहना, हाँ मेरा युगल है, ये मेरे बच्चे, परिचय देने के लिए है ना, परिचय देने के लिए, लेकिन अपने बुद्धि में याद रहे मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ही। तब बाबा ने कहा यहां नंबर वन राज, कुछ मेहनत करना जी, ये एक बात याद हो, नंबर वन पवित्र रहना है। अगर किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं, लाखों ब्रह्मचारी है जंगल में, वो सत्युग में नहीं आएंगे है ना। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पवित्रता किसको कहा, किसी पर नजर गई कोई कैसा भी हो देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है। श्रेष्ठ विचार नंबर वन पवित्रता है, नंबर वन राजयोग। राजयोग क्या है, श्रेष्ठ विचार करो, सही कि दुविधा है, कन्विंस, बहुत कुछ करना चाहिए, 4 घंटा बैठना चाहिए, योग करना, वो नंबर बाद में, वो नंबर वन आना चाहिए सत्युग में, नंबर टू आना, वो फिर पोस्ट पोजीशन, सेवा, पहली अवस्था, फिर आपकी व्यवस्था होंगी। अगर आपकी अवस्था ऐसी नहीं है, किसी के संबंध में कई आकर्षित हो जाते हो, कई इच्छा हो जाती है, कोई ईर्ष्या है, ये बहन जी थी मुझे गुस्सा किया था 2 साल पहले, हाँ किया था, नहीं ऐसा नहीं, सही किया था, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरा धर्म क्या है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। दिस इज अंडरस्टैंडिंग, इसको कहा समझ, इसको बुद्धि चाहिए। तब बाबा ने पहले बुद्धि दिया है, कन रस नहीं। मंजूर, समझ में आया? हाँ, कैसे 3 प्रकार से बाबा पालना करता है, आज भी करता है। ऐसा नहीं समझना बाबा नहीं आता है, बाबा एक एक के ऊपर नजर है आज भी। इसलिए मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल दिया, अभी 2 साल का है, और भी है, लेकिन समय को देखना पड़ेगा ना। इसके पहले वाले क्लास में 1:30 बज गया था, बहुत प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा आपको लेटेस्ट एक एग्जाम्पल, चावल के हंडे में सारे चावल नहीं देखते, एक ही दाना देखते हैं, तो सब पक गया। तो आपके मन में कभी विचार आएगा, अब भी बाबा कहां पालना करता है, बाबा ब्रह्मा बाबा नहीं था तो कैसे किया, 50 साल गुलजार दादी के द्वारा पालना किया, उसके पहले क्या किया, 3 प्रकार से पालना किया। शिव बाबा ने संगम पर, 100 साल संगम पर 3 प्रकार से पालना करता है। छोटे बच्चे थे बिल्कुल, तब गोदी में बाबा गोदी में लेता था, हर प्रकार के पालना करता था। उसके बाद अपना तन नहीं होता है, दूसरों के द्वारा भी आकर पालना किया, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके सारे विश्व की सेवा किया। साकार ब्रह्मा बाबा था तब कितने सेंटर्स थे, अभी कितने हैं, तो वृद्धि अव्यक्त रूप से कितनी वृद्धि किया, और आज भी सारे विश्व को देखता है, लेकिन किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता है, हरेक को स्वतंत्रता दी है, नहीं तो सभी राजा ही बन जाएंगे, है ना। नंबर वार ज्ञान दिया, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान दिया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, करना न करना आपके हाथ में है, अगर आप करेंगे मना नहीं है, करो फिर ये पाओ, नहीं करो तो ये पाओ। सत्युग भी आपके सामने है, द्वापर युग भी आपके सामने है, चॉइस आपके पास। इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल। आध्यात्मिक जीवन फोर्स से नहीं, हाथ जोड़ो मंदिर में जाओ, नहीं, स्व इच्छा से चलने का रास्ता है, समझ से चलने का रास्ता है। ठीक है मंजूर की कठिनाई? ऐसा नहीं कहा भाई जी पाव दर्द करते फिर भी बैठे रहना पड़ता है, योग लगता नहीं, नहीं, हाँ इतना सहज है। तो चलते फिरते कर्म करते 24 घंटे काम करो, कोई जन मना नहीं किया, है ना। अभी एक बिजनेस करते 10 बिजनेस करो तो कोई मना नहीं, लेकिन कुछ नहीं करना है। किसी को देखते ही मन आपके हाथ में है, आपका मन है, औरों का नहीं, शुभ सोचना है। एक ही चीज, एक में नंबर 1 जो बाबा चाहता है, नंबर 1 पवित्रता, वो आ जाएंगे, क्योंकि विचार पहले है, फिर दृष्टि, फिर बोल, फिर कर्म, सब जाते हैं। देखो हमारे प्रिंसिपल साहब आ गए, डरना पड़ता है ना, इसलिए मैं पहले से सावधान रखा है ना। पता आपको प्रिंसिपल है, जानते हो? नहीं, इनको जानते हो? हाँ, देखो स्कूल में टीचर को क्या करना, प्रिंसिपल आते ही खड़ा हो, चुप रहना पड़ता है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ओके, ओम शांति। आपको पता, जानते हो प्रिंसिपल है? इंदौर में जो हॉस्टल है, 2 बहनें देखती, एक है प्रिंसिपल और एक है मुख्य टीचर, हाँ, और ये प्रिंसिपल है, 2 बहनें हैं, दोनों बच्चों, सभी बच्चों को कंट्रोल करते हैं बहुत सालों से, इसलिए इनका नाम प्रिंसिपल रखा।
बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने हम सबको समझाया कि प्यारे बाबा की अव्यक्त पालना अभी भी साकार में हमें कैसे मिल रही है। बहुत समझ में आया ना, मैंने थोड़ा सा सुना लेकिन बहुत अच्छा लगा, है ना।
नहीं, आपका मन कभी संतुष्ट रहता है, अगर आप कहते दिल करता है तो सो सके, दिल कभी भरपूर हो सकता है, लेकिन मन सदा चंचल है। अच्छा, लेकिन वो कहानी रामायण सुनो, महाभारत सुनो, मन को अच्छा लगता है, मन कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है, हाँ दिल हो सकता है।
लेकिन आप सभी जानते हैं ना कि बाबा ने हमारी दिनचर्या बना के दी है ना भट्टी की, तो उसी प्रमाण हमें आगे के कार्यक्रमों को भी व्यवस्थित संचालित करना है, तो इस कार्यक्रम को समय पे पूरा करेंगे तो अगला समय पर शुरू कर सकेंगे। तो भाई साहब का दिल से शुक्रिया, एक हाथ की ताली से हम सभी शुक्रिया करते हैं। और